أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وإمامنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مناسب یہ ہے کہ ایک شعر آپ کی خدمت میں بطور شکوے کے عرض کرتا ہوں. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہیں. ملک کی آزادی, آزادی کی تاریخ, بہت افسوس اس بات کے اوپر ہیں کہ خود آزادی کے گل اور پھول ہی اس کو نہیں جانتے. آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اس مدرسے میں اس اسکول کے ماتحت اتنے سارے علماء اور عام ہمارے بیوی بھائی اس مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں. میں آپ سب کو اس پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آج تو 26 جنوری ہے, پورے ملک کے اندر خوشی منائی جا رہی ہے. چھبیس جنوری کو ہماری اس ملک کے اندر ملک کا کانسٹیٹیوشن, جس کو بندھارن کہو, دستور کہو, وہ بنایا گیا اور اس کو عملی طور پر پورے ملک کے اندر نافذ اور جاری کیا گیا. آپ کو یہ جان کر کے حیرت ہوگی کہ دیش کی پہلی پارلیمنٹ نے بندھارا اور کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے جو کمیٹی مرتب کی تھی, جس کے چیئرمین ڈاکٹر بھیمراؤ امبیڈکر تھے, اس کمیٹی کے اندر الحمدللہ ہمارے اکابرین میں سے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, اور حضرت مولانا سید ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کانسٹیٹیوشن کمیٹی کے اندر تھے, اور مجاہد قوم و ملت, جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد حفظ الرحمان صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ, ये भी उस कमेटी के अहम मुआविनीन के अंदर से थे। ये उन हजरात की जुरअत मंदाना दिलेरी और जसारत का नतीजा है कि इस मुल्क को इतना बेहतरीन जमहूरी और लोकतंत्र वाला बंधारण नसीब हुआ है। जमहूरियत, लोकतंत्र और प्रजासत्ताक किसको कहते हैं? किसी अंग्रेज राइटर ने उसको बहुत मुख्तसर तीन लफ्जों के अंदर समझाया है कि जमहूरियत प्रजासत्ताक कहते हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। पब्लिक थी, पब्लिक वड़े अने पब्लिक माटे, अवाम से, अवाम के लिए और अवाम ही के वास्ते जो निजाम बने उसको जमहूरियत का निजाम कहा जाता है। आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी और सबसे मुस्तहकम जमहूरियत होने का फख्र अगर किसी को हासिल है तो हमारी इस मुल्क हिंदुस्तान को हासिल है। और मैं बिना मुबालगा बहुत यकीन के साथ कहता हूं कि मुल्क को इतना बेहतरीन जमहूरी निजाम मिला, इतना बेहतरीन सेक्युलरिज्म निजाम मिला, इसके पीछे दिमाग काम कर रहा था हजरत मौलाना सैयद अबुल कलाम आजाद और शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह इन दोनों बुजुर्गों की खबर को नूर से मुनव्वर फरमाए। आइए, 1950 के अंदर तो मुल्क जमहूरी निजाम में आया, प्रजासत्ताक निजाम में आया, लेकिन 15 अगस्त 1947 में 1947 15 अगस्त को रात 12 बजे हमारा ये मुल्क आजाद हुआ। उससे पहले ये हमारा पूरा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी के अंदर था और 200 बरस तक हमारा मुल्क अंग्रेजों के हाथ में गुलाम रहा। 1757 के अंदर 1757 प्लासी के मैदान के अंदर नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली लड़ाई लड़ी थी। वो हिंदुस्तान की जंग आजादी की इब्तिदा और शुरुआत थी। 1757 ईस्वी से लेकर के 1857 तक पूरे 100 साल ऐसे गुजरे हैं कि इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बेशुमार बुजुर्गों और उलमा ने कुर्बानी दी है। फिर दूसरा दौर शुरू हुआ 1857 से लेकर 1947 की 15 अगस्त तक। इसमें भी हमारे बुजुर्गों ने जेलें और फांसियों को बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ मुल्क के खातिर चूमा है। आज की इस मजलिस के अंदर कोशिश करता हूं कि ये 200 साल तारीख का कुछ हिस्सा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। हकीकत है हजरात अकाबिरीन, उलमा और मेरे भाइयों, मुल्क की आजादी की 200 साल तारीख में आपको एक मजलिस के अंदर हरगिज नहीं सुना सकता, लेकिन फिर भी मैं कुछ खास खास अहम अहम चीजों की तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं। पहले ये समझो कि अंग्रेज हिंदुस्तान आए कैसे। यूरोप तो एक छोटा सा जजीरा है, आयरलैंड है, टापू है। उस यूरोप के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मुल्क हैं। यूरोप का एक मुल्क है पुर्तगाल। सबसे पहले हिंदुस्तान आने वाले पुर्तगाल के यूरोप गोरे लोग थे। 1498 ईस्वी के अंदर 1498 में सबसे पहले पोर्टुगल से तिजारती काफिला लेकर के वास्कोडी गामा नाम का एक मशहूर मल्ला हिंदुस्तान आया है और उसने कालीकट के अंदर अपना जहाज ठहराया और उन्होंने हिंदुस्तान के साथ तिजारत के रवाबित शुरू किए। ये पोर्टुगीज कौम सबसे पहले हिंदुस्तान आने वाली यूरोपियन कौमों में से एक कौम है और शायद आपको जानकर के ये हैरत होगी कि बंबई जो उस जमाने में एक छोटा सा देहात था जिसकी तरफ किसी की तवज्जो भी नहीं होती थी वो पोर्टुगीजों के कब्जे के अंदर था। इंग्लैंड के एक शहजादे की शादी हुई पोर्टुगीज की शहजादी से तो निकाह के मौके के ऊपर जहेज के तौर पर बंबई देहात यूरोपियनों को हवाले किया था। फिर धीमे धीमे करके उस देहात को उन्होंने शहर के तौर पर आबाद किया। इस मुल्क में सबसे पहले आने वाली यूरोपियन कौम पोर्टुगीज कौम है। उसके बाद 1601 ईस्वी के अंदर 1601 ईस्वी के अंदर इंग्लैंड के अंदर 101 ताजिरों ने एक कमिटी बनाई। ये सब ताजिर और बिजनेसमैन लोग थे। उस कमिटी का नाम उन्होंने रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना हुई है 1601 ईस्वी के अंदर और उन्होंने आपस के अंदर 30,000 पाउंड जमा किए और जमा करने का मकसद था इंडिया आकर के हिंदुस्तान आकर के तिजारत और बिजनेस और कारोबार करना। ये उनका मकसद था। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आई और इन्होंने मुल्क से तिजारती ताल्लुकात शुरू किए। मैं आज बहुत खुशी से आपके सामने कहूंगा कि वो जमाना था कि हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर सोने की चिड़िया समझा जाता था और हकीकत में भी ये सोने की चिड़िया था। यहां जो सनअत थी, फैक्ट्रीज थी, यहां जो इंडस्ट्रीज थी और यहां की जो कारखाने थे वो पूरी दुनिया के अंदर बेमिसाल हुआ करते थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ढाका में इतनी आलीशान मलमल का कपड़ा बनता था कि 100 मीटर मलमल का कपड़ा अगर कोई उसको लपेट दे तो एक अंगूठी के हलके के अंदर बिला मुबालगा आ जाता था। इतनी आलीशान मलमल ढाका के अंदर तैयार होती थी। आप कहते हैं कि ढाका में, ढाका उस वक्त पर हमारे मुल्क का एक हिस्सा था और मैं आपको बतलाऊं कि वो हिंदुस्तान जिसको देखने के लिए हमारी निगाहें तरसती है, एक जमाने के अंदर इधर उसकी सरहद अफगानिस्तान से शुरू होती थी और इधर उसकी सरहद रंगून और बर्मा से मिलती थी और इधर नेपाल और चीन की दीवारों से हमारे मुल्क की सरहदें टकराती थी और उधर श्रीलंका के समंदर से टकराती थी। एक वसी अरीज हिंदुस्तान था। जब एक जमाना हुआ था कि पड़ोसियों ने शरारत करके कारगिल पर अटैक किया था तो वो कई जगहों पर रैलियां निकलती थी। आज तो माशाल्लाह हमारे चंद हिंदू भाई आए हैं। काश के हमारे देश के अंदर ऐसी कौमी एकता आगे बढ़े। उस कारगिल की रैली के मौके के ऊपर 5,000 हिंदुओं के मजमे के अंदर मैंने खड़े होकर कहा था कि मेरा दिल ये कहता है, मुसलमान हूं, मौलवी हूं, लेकिन सुनो, हमारे दिल के अंदर देश प्रेम के लिए क्या जज्बात है। उस वक्त हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। तो एनडीए की अलायंस गवर्नमेंट थी मरकज के अंदर। हमने कहा था और दूसरे दिन तमाम अखबारों ने उसको हाईलाइट किया था कि हम तो वाजपेयी जी से ये दरखास्त करेंगे, विनंती करेंगे कि कारगिल से पाकिस्तानियों को भगाने के बाद अपनी आर्मी को वापस नहीं बुलाना है। बल्कि हिंदुस्तान की मिलिट्री आर्मी से कहो आगे बढ़े और इतना आगे बढ़े कि 13 अगस्त 1947 के दिन हिंदुस्तान का जो नक्शा था वो नक्शा हमको देखना है। ये हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क का वो नक्शा हो कि पाकिस्तान भी दिल्ली के माताहत हो और बांग्लादेश भी दिल्ली के माताहत हो। 13 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क का जो नक्शा था वो देखने की आंखों का आंसू और तमन्ना है। हम तो वो देश प्रेम रखते हैं, वो देश भावना रखते हैं और इंशाल्लाह अगर आप हजरा जम के बैठे रहे तो मैं 1947 तक आपको ले जाऊंगा 1757 से। आप सुनेंगे कि मुल्क की आजादी के अंदर तकसीम करवाने में, पार्टीशन के अंदर पाकिस्तान बनवाने में कौन लोग थे। इंशाल्लाह वो राज भी मैं आपके सामने इसी मजलिस के अंदर अर्ज करूंगा। आज जो दुनिया कहती है कि मुसलमानों ने पाकिस्तान लिया, गलत बात है। अल्लाह का करम है, फजल है, उस मालिक का एहसान है, इस बदन की रगों के अंदर वो खून दौड़ रहा है जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। हमने नहीं चाहा था कि पाकिस्तान बने और देश के टुकड़े हो गए, हम तो उसी दिन मुखालिफ थे। है तो इस मुल्क के लिए हमने हमारे बुजुर्गों से यह जज्बा सीखा, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, कि वतन की मोहब्बत ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है, हमको हमारे बड़ों ने सिखलाया है। आइए थोड़ी थोड़ी शुरुआत करते हैं आजादी की लड़ाई की इब्तिदा कैसे हुई। ये अंग्रेज जो 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हिंदुस्तान में आए, तिजारत के नाम के ऊपर इन्होंने अपना लश्कर लाना भी शुरू किया और धीमे 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 करके हमारे मुल्क के अंदर उन्होंने कोठियां अपनी कायम की और तिजारत की आड़ के अंदर इन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू किया। आज बहुत दुख और अफसोस की बात है कि पता नहीं किस हिकमत से अमली के पेशे नजर मल्टीनेशनल कंपनियों को हमारे मुल्क में आने की खुशी खुशी दावतें दी जा रही है। क्या हम हमारा इतिहास भूल गए कि यही ईस्ट इंडिया कंपनी जो बिजनेस और तिजारत की पॉलिसी पर हिंदुस्तान आई थी, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगे चलकर के हमारे मुल्क को गजब किया और 200 बरस तक हमारे मुल्क को लूटा है। काश के इस तारीख और इतिहास से हमारे मुल्क को चलाने वाले हजरात कुछ सबक हासिल करें, कुछ नसीहत हासिल करें। तो यही ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत से आगे बढ़कर के फिर उसने मुल्क के ऊपर गासिबाना कब्जा किया। सबसे पहले 1757 ईस्वी के अंदर बंगाल में प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के सामने जबरदस्त जंगें लड़ी, लेकिन उस जंग के अंदर हमारे पास ताकत थी, अपराध से सब कुछ था, उसके बावजूद महज चंद गद्दारों के नतीजे के अंदर हमको हारना पड़ा था। और मेरे मुसलमान भाइयों, एक कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत में आपको अर्ज कर दूं, वो कड़वी और सच्ची हकीकत ये है कि जितना गैरों से नुकसान नहीं हुआ इतना अपनों से नुकसान हुआ है। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत दर्द से फरमाया करते थे, इस उम्मत की खेती को पहले अपनों ने काटा है फिर गैरों ने काटा है, पहले इसको काटने वाले अपने हैं। एक मसल कहावत मशहूर है, एक लकड़ी काटने वाला एक दिन जंगल के अंदर गया, उसके हाथ के अंदर कुल्हाड़े का वो हिस्सा था जो लोहे का बना हुआ होता है, जो काटने का काम करता है। सिर्फ वो अपने हाथ में लेकर गया, उसमें दस्ता नहीं था, हाथा लगा नहीं था, सिर्फ कुल्हाड़ा लेकर के जंगल में गया तो क्या जंगल के दरख्त अपनी जबान हाल से बात कर रहे थे, हमें कोई खतरा नहीं है, ये कुछ ही नहीं कर सकता हमारा। लेकिन वही लकड़ी काटने वाला दूसरे दिन उस लोहे के कुल्हाड़े में लकड़ी का दस्ता और हाथा लगा करके गया, तो जंगल के तरफ से आपस में जबान हाल से बात कर रहे थे, आज हमारी खैरियत नहीं है इसलिए कि हम में से एक आदमी उसके साथ हो गया है। मेरे दोस्तों, ये हंसने से ज्यादा इबरत की बात है। जब तक हमारे अपने गैरों के नहीं होंगे वहां तक गैर हमारा कुछ नहीं कर सकते। जितना अपनों से नुकसान पहुंचता है इतना गैरों से भी नुकसान पहुंचता नहीं है। वला तनाव करो फतब शलू वतज हबरी हुकुम। कुरान हमको 1400 साल से तालीम दे रहा है, आपस में मत लड़ो, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, कमजोर और बुजदिल हो जाओगे। ऐलान है कुरान का, वाक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रुकू। एक होकर के रहो, दुनिया की कोई ताकत तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अभी गुजरात के गवर्नर साहब हमारे यहाँ आए हुए थे एक हॉस्पिटल के उद्घाटन के अंदर, तो मुझे कहा कि गवर्नर साहब के साथ आपको भी कुछ कहना है। मैंने कहा क्या कहेंगे गवर्नर साहब के साथ, तो मैंने गवर्नर साहब की हाजिरी में एक बात अल्लाह ने कहलवा ली। मैंने कहा गवर्नर जी, मेरी एक अपील आपसे है, मेरी ये बात आप ऊपर तक पहुंचाएं कि अगर हमारे मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम कौमी एकता हो गई, मेरे इन अल्फाज के ऊपर आप गौर कीजिए, अगर इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता हो गई तो हमारे मुल्क को दुनिया में सुपर पावर ताकत बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। अगर एक हो गए तो पूरी दुनिया के अंदर हमारा मुल्क सुपर पावर ताकत बन करके उभरेगा। आज जो लोग खतरा रखते हैं हिंदुस्तानी माइंड से, हिंदुस्तानी दिमाग से, हिंदुस्तान के लोगों की अकल और होशियारी से, वही लोग हमारे मुल्क के लोगों को लड़वाने की पॉलिसी कर रहे हैं। इसको हमें समझना होगा कौन हमको लड़ा रहे हैं, ये लड़ाने के हकीकी जिम्मेदार कौन है। जब तक हम अपने सच्चे दुश्मनों को नहीं पहचानेंगे वहां तक जो है हमारा काम होने वाला नहीं है। जिस दिन कौमी एकता हो जाएगी हमारे मुल्क को दुनिया की कोई ताकत सुपर पावर ताकत बनने से नहीं रोक सकेगी। मौलाना आजाद के अल्फाज में आपको कहूं, हजरत मौलाना सैयद अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा दिल्ली के चांदनी चौक में तकरीर करते हुए फरमाया था, अगर आसमान से कोई फरिश्ता आए और वो फरिश्ता कुतुब मीनार पर खड़ा रहे और खड़े होकर के ऐलान करे, ए हिंदुस्तान वालों, हम तुमको आजादी देने का फैसला लेकर के आए हैं, बस शर्त एक रहेगी कि हिंदू मुस्लिम को अलग अलग होना पड़ेगा, हिंदू अलग मुसलमान अलग, इस शर्त पर हम तुम्हें आजादी देंगे। तो मौलाना आजाद के अल्फाज थे कि हम उस आसमान के फरिश्ते को कहेंगे, हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए जिसमें हिंदू मुस्लिम के दो टुकड़े कर दिए गए हो, हम तो हमारे देश को एक रखना चाहते हैं, इस शर्त पर हमें आजादी भी मंजूर नहीं है। ये हमारे अकाबिर थे जिन्होंने इस देश की एकता के खातिर हर चीज की कुर्बानी अपनी पेश की थी। 1757 के अंदर कुछ गद्दारों की वजह से हमको नाकाम होना पड़ा था, फिर उसके बाद ये धीमी धीमी जंग मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आगे बढ़ती रही। एक वक्त आया कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने 1798 के अंदर लॉर्ड वेलेस्ली को हिंदुस्तान भेजा, यहां का गवर्नर जनरल बना करके, वाइसरॉय बना करके। जब लॉर्ड वेलेस्ली आया है तो उसने पूरे हिंदुस्तान का जायजा लिया, ये बहुत जहीन वाइसरॉय गुजरा है, और उसने पूरे मुल्क का जायजा लेकर के ये फैसला किया कि इस मुल्क को अंग्रेजों के हाथ में आने से अगर कोई रोक सकता है तो वो एक ही हुकूमत है, वो मैसूर की खुदादाद हुकूमत और उसके बादशाह सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह। कहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब कोई भी एक ऐसा बादशाह ऐसा नहीं रहा जो अंग्रेजों की आंखों में आंख मिलकर मिला करके बात करे, और जिसके लश्कर और फौज से अंग्रेजों को खतरा होवे, ऐसा एक भी बादशाह नहीं और एक भी हुकूमत नहीं है। इसलिए कि 1757 से लेकर के 1798 तक में अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान के राजा महाराजा यहाँ तक के मुगलिया हुकूमतों को भी खोखला कर डाला था। एक हुकूमत बाकी रही थी तब मैसूर के अंदर खुदादाद हुकूमत सुल्तान की वो शहीद को अगर खत्म न किया जाए तो फिर हिंदुस्तान के अंदर हमारा कदम जमने वाला नहीं है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी पूरी तवज्जो पूरा ध्यान इस बात की तरफ लगा दिया कि किस तरह सुल्तान टीपू शहीद को खत्म कर दिया जाए और मैसूर की खुदादाद हुकूमत को खत्म कर दिया जाए। पूरी ताकत उन्होंने लगाई इसके पीछे। अब आइए मैं आपको सुनाऊं हिंदुस्तान की दूसरी अजीम जंग आजादी जो सुरंगापट्टनम के मैदान के अंदर खेली गई और जिसके हीरो थे सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। कबल उसके कि उस जंग के कुछ हालात सुनाऊं, मैं आपको सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हालात के मुताबिक दो चार बात रखता हूं। सुल्तान टीपू शहीद कुरैशी खानदान से ताल्लुक रखने वाले थे, असलन अरबियुन नसल थे। उनके वालिद सुल्तान हैदर अली मरहूम और उनकी वालिदा फातिमा बीबी मरहूमा। सुल्तान टीपू शहीद 30 जिलहज 1163 हिजरी मुताबिक 10 नवंबर 1750 ईस्वी के अंदर सुल्तान टीपू शहीद की पैदाइश हुई। जब आपकी पैदाइश हुई तो आपका नाम फतेह अली रखा गया था, लेकिन वहां एक मशहूर बुजुर्ग थे मैसूर के अंदर हजरत मस्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह। उस मस्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह की तरफ निस्बत करते हुए आपका नाम सुल्तान टीपू शहीद मशहूर हो गया। का बचपन के अंदर 6 साल की उम्र में हजरत सुल्तान टीपू एक मर्तबा बच्चों के साथ खेल रहे थे तो किसी अल्लाह के वली का उनकी खेल की जगह से गुजर हुआ तो अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने वो नजर दी होती है इत्तको बिफिरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डरा करो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर के जरिए से देखा करता है। उस अल्लाह के वली ने देख करके कहा ये बच्चा कौन है? बताया गया ये फतेह अली है। कहा इस बच्चे के चेहरे को देख करके मैं भांप रहा हूं कि ये बच्चा मुस्तकबिल में भविष्य के अंदर बादशाह और राजा बनेगा। और उस अल्लाह के वली ने चलते चलते सुल्तान टीपू के हाथ पकड़ के कहा बेटा जिस दिन तुम इस मुल्क के बादशाह बन जाओ जिस जगह पर तुम खेल रहे हो उस जगह के ऊपर नमाज के लिए एक मस्जिद ताबीर करवा देना। बच्चों की बात सुनी गुजर गई। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने वो दिन दिखलाया कि सुल्तान हैदर अली वालिद मरहूम के इंतकाल के बाद हजरत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह मैसूर की सल्तनत खुदादाद के बादशाह बने। और आपको हैरत होगी इस बात से कि उस वक्त उनकी उम्र शरीफ शरीफ 32 साल की उम्र थी। 32 साल की उम्र के अंदर सुल्तान टीपू सल्तनत खुदादाद के बादशाह बनाए गए। बादशाह बनने के बाद उन्होंने 1787 ईस्वी के अंदर उस दरवेश की नसीहत याद आई और मस्जिद आला नाम की एक मस्जिद का उन्होंने संगे बुनियाद रखा और मस्जिद की तामीर करवाई। तकरीबन 6 लाख रुपये उस जमाने के अंदर उस मस्जिद आला की तामीर के ऊपर खर्च हुए और लंबी मेहनत के बाद वो मस्जिद जब तामीर हुई तो 1790 ईस्वी के अंदर उस मस्जिद का इफ्तिताह हुआ। जब मस्जिद का इफ्तिताह हुआ तो आप हैरत में रहोगे, उस दिन दुनिया ने देखा कि सुल्तान टीपू कितने बड़े अल्लाह के वली और बुजुर्ग बंदे थे। जिस दिन मस्जिद आला का इफ्तिताह हो रहा था बड़े बड़े उलमा मशाइखीन मुफ्तियाने किराम और बड़ी तादाद में मुसलमानों को इफ्तिताह के अंदर दावत दी सुल्तान टीपू शहीद ने और ऐलान कर दिया आज मेरी मस्जिद की इफ्तिताह हो रही है, ऐसा आदमी नमाज पढ़ाएगा जिसकी बालिग होने के बाद कोई फर्ज नमाज कज़ा न हुई हो, जो साहिब तरतीब हो ऐसा आदमी मेरी इस मस्जिद की पहली नमाज पढ़ा करके इफ्तिताह कराएगा। ऐलान किया था कि बड़े बड़े अतकियाए जमाना के तकवा के नापने का वो थर्मोमीटर लगा हुआ था, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है, सन्नाटा पूरे मजमे के ऊपर छा गया। जब कोई आगे नहीं बढ़ा तो सुल्तान टीपू शहीद रोते हुए आगे बढ़े और कहा कि आज अपने राज को खोलने के ऊपर मजबूर हूँ, अल्लाह का फजल करम एहसान है कि बालिग होने के बाद मेरी कोई फर्ज नमाज सजा नहीं हुई है। ये थे हमारे मुसलमान हुकुमरान और बादशाह, पूरी पूरी हुकूमतों को चलाते थे, हुकूमत का निजाम संभालते थे, उसके बावजूद भी उनकी फर्ज नमाजें कभी कज़ा नहीं हुआ करती थी। उलाई का आबाई फजीनी बिमिसलिहिनी, ये है हमारे बाप दादा, अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे। आज तो एक मामूली ओहदा मिलता है और हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। नमाज तो नमाज, शरीयत के अहकाम को हम कुर्बान करने, ईमान का सौदा करने तैयार हो जाते हैं। ये हुकुमरान थे, पूरे पूरे मुल्क की हुकूमतें संभालते थे, लेकिन उसके बावजूद कभी भी इन्होंने इबादत और अमाल को तर्क नहीं किया। हालात में लिखा है कि पूरी जिंदगी सुल्तान टीपू शहीद का मामूल था कि फजर की नमाज बाजमात मस्जिद आला के अंदर अदा फरमाते थे, और आज तो कोई मुसलमान मिनिस्टर या कोई मुसलमान बादशाह मस्जिद में नमाज पढ़ने आए दूसरे दिन अखबार में आ जा रहे हैं कि कल वो नमाज पढ़ने आए थे। बहरहाल ये वो हुक्मरान थे कि हमेशा बाजमात फजर की नमाज मस्जिद आला के अंदर अदा करने के पाबंद थे। और फजर की नमाज अदा करने के बाद सुनिए मुसलमान भाइयों कैसे हालात से जिंदगी गुजारी, तब अल्लाह की मदद आती थी कि रोजाना एक घंटा कुरान करीम की तिलावत के पाबंद थे, हुकूमत चलाते थे, फजर के बाद एक घंटा रोजाना कुरान करीम की तिलावत होती थी। आज तो हमारी यासीन भी मुश्किल से अदा होती है। अल्लाह हमें कुरान से मोहब्बत अदा फरमाए, कुरान की तिलावत का पाबंद बनाए, और वली को वली पहचानता है, कुतुब को कुतुब पहचानता है। मैं नहीं कहता हूँ, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जिनके नाम लेने को आज हम अपनी फखर और सआदत की चीज समझते हैं, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मक्तूबात में लिखा है कि सुल्तान टीपू शहीद अपने जमाने के कुतुब और अब्दाल के इमाम थे, इमामुल अख्ताब वल अब्दाल थे। हजरत शेखुल इस्लाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई बात है। हजरत सुल्तान टीपू शहीद की विलायत की जब बात निकली तो एक और वाकया उनकी विलायत और बुजुर्गी का आपकी खिदमत के अंदर अर्ज कर लूं। हालात में लिखा है कि एक मरतबा कंपली के इलाके के अंदर हजरत सुल्तान टीपू शहीद अपनी बहुत बड़ी जमात को लेकर के निकले। रमजान का महीना था, मुसलसल फताह हो रही है, एक तरफ रोजे और एक तरफ मैदान में अंग्रेजों के सामने लड़ना, रमजान के रोजों के साथ पूरा महीना महाज और मैदान के अंदर इन्होंने गुजारा है, बल्कि मुल्क और देश के खातिर उस साल ईद भी मैदान के अंदर की है सुल्तान टीपू शहीद ने। उसी जमाने के अंदर जब मुसलसल अंग्रेजों को हराते हराते आगे बढ़ रहे थे तो एक मरतबा कंपली के इलाके के अंदर जो एक दरिया पड़ता था उस दरिया के अंदर नदी के अंदर बड़ी तुगयानी आ गई, सैलाब आ गया, बारिश का जमाना था और लश्कर के लिए दरिया पार करना मुश्किल हो गया, सब परेशान क्या करे क्या करे। हजरत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फौजी अफसर और कमांडरों से कहा मेरे दिल में बेइख्तियार फतह मिस्र का वाकिया याद आ रहा है कि जब दौरे खिलाफत राशिदा के अंदर फतह मिस्र हजरत अमर इब्न अल आस रज़ी अल्लाह तआला ने मिस्र से गवर्नर आजम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा कि ये दरियाए नील मिस्र का दरिया नदी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी साल में चार महीने बहती नहीं है और मिस्र के लोग एक नौजवान लड़की को अच्छे अच्छे नए कपड़े पहना करके और जवेरात पहना करके कवारी जवान खूबसूरत लड़की को नदी के नाम पर भेंट चढ़ाते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, तब जाकर के वो नदी बहना शुरू होती है। हजरत अमर इब्ने अल-आस रजी अल्लाह तआला उन्होंने मिस्र वालों को कहा, तुमने जाहिलियत के जमाने में जितनी लड़कियों को बलिदान चढ़ाया हो, इस्लाम आने के बाद ऐसा कोई बलिदान इंसान का नहीं चढ़ाया जाएगा, हमारा मजहब ना कहता है। आपने खत लिखा मदीने मुनव्वरा, वहां से जवाब आया और हजरत अमर इब्ने अल-आस रजी अल्लाह तआला उन्होंने हजरत उमर की भेजी हुई एक चिट्ठी दरियाए नील के अंदर डाल दी। जिस रात के अंदर वो चिट्ठी डाली गई, रावी का बयान है कि सुबह के अंदर मिस्र के अवाम में जाकर के देखा तो 17 हाथ पानी आ चुका था और ऐसा पानी आया कि आज 1400 साल गुजर गए लेकिन नील का पानी कभी खुश्क नहीं हुआ, कभी कम भी नहीं हुआ। ये करामत थी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक तहरीर की। सुल्तान टीपू शहीद ने कहा, हम तो उनकी औलाद हैं कि जिनकी एक चिट्ठी के ऊपर दरियाए नील का पानी बहा करता था। आओ आगे बढ़ो, अल्लाह से दुआ करते हैं और अपने तोप खाने के तोपची से कहते हैं, अल्लाह का नाम लेकर दुआ करके दरिया के ऊपर गोले बरसाना चालू करो। रावी नकल करते हैं, 1, 2 करके 21वां गोला जब उस दरिया के अंदर गिरा, बस खुदा का एहसान देखो, सुल्तान टीपू शहीद की करामत उस इलाके के तमाम हिंदू और मुसलमान ने देखी कि पूरे दरिया का पानी बिल्कुल कम और बिल्कुल सूखने के करीब हो गया 21वें गोले के ऊपर। और पूरे लश्कर को लेकर के आफियत के साथ उस दरिया को सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पार कर दिया। ये खुल्लम खुल्ली करामत थी हजरत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह तआला ने की। हालात में लिखा है, ये बात मैं अपने उलमा की नजर करता हूं कि रात को मगरिब के वक्त पर हुकूमत के कामों से फारिग होकर के ईशा की नमाज अदा करने के बाद अपने जाती कुतुब खाने में तशरीफ ले जाते। बड़ा जाती कुतुब खाना था, बड़े इल्म नवाज आदमी थे। तारीख में 44 या 45 किताबों का तस्करा मिलता है जो सुल्तान टीपू शहीद की अपनी तसनीफ है या अपने किसी मोतमद से लिखवाई हुई किताब है। और देर रात तक अपने जाती कुतुब खाने के अंदर बैठ करके मुताला किया करते थे। जो आदमी को कुछ मोती हीरे जवाहरात चाहिए वो रातों को किताबों की कब्रिस्तान में जाकर के कुछ हीरे जवाहिर तलाश करे। अल्लाह हमें ये शौक अता फरमाए। तो रात की देर तक सुल्तान टीपू शहीद मुताले के अंदर मशगूल रहा करते थे। आपको जान करके हैरत होगी, बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और पेंटागॉन की तरफ से, जो अमेरिका का आलमी लश्करी अड्डा है पेंटागॉन, वहां पर जो रॉकेट की जो थियरी कि रॉकेट और मिसाइल कैसे बने, रॉकेट की हिस्ट्री और इतिहास और तारीख लिखने वाले साइंटिस्टों की लिखी हुई बात बतला रहा हूं कि इस दुनिया के लोगों को रॉकेट और मिसाइल किसी ने सिखलाया हो तो सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने सिखलाया है। ये पेंटागॉन अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री के वो साइंटिस्ट जिन्होंने रॉकेट की हिस्ट्री लिखी है, उनका ये बयान है कि दुनिया को रॉकेट और मिसाइल सिखलाने वाले कि ये कैसे बनना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ये सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह तआला ने। इसलिए तो मैंने आपसे शिकवा किया था कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं, सारी दुनिया हमारे हालात को जानती है, नहीं जानते तो अफसोस के मुसलमान नहीं जानते। आगे बढ़िए, 1799 मई के महीने की 4वीं तारीख یہ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا آخری دن ہے. اس دن رات میں عجیب خواب دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے. خواب میں بشارت دی گئی کہ آئندہ کل تم شہید ہو کر کے جنت میں آ رہے ہو. جب صبح میں اٹھے گھبرائے نہیں, اس دن ہو کے چھپ نہیں گئے, بلکہ فخر کے ساتھ کہ ملک اور دیش کی آزادی کے لیے مجھے شہید ہونا ہے, اس خوشی کے اندر اشراق کے وقت میں دو رکعت پہلے شکرانہ کی نماز ادا کی, اور اس کے بعد کئی جانور شکرانے کے ذبح کروائے اور اناج اور غلہ فقیروں میں شکرانے کا تقسیم کروایا. اس لیے کہ خواب میں بشارت شہادت سن چکے تھے. کیسا جذبہ رکھنے والے تھے کہ دیش کی آزادی کے لیے شہادت ملنے والی ہے, اس کو اپنی زندگی کا خوشی کا موقع سمجھ رہے ہیں اور شکرانے کے طور پر صدقہ خیرات اور نماز پڑھ رہے ہیں. فجر کی نماز معمول کے مطابق مسجد معلیٰ میں ادا فرمائی, تلاوت قرآن سے فارغ ہوئے تو ایک خادم قریب میں حاضر ہوا اور اس نے حاضر ہو کر کے سلطان ٹیپو شہید کو ایک سفارش کی, حضرت آج کا دن کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے, آپ اپنی جان کے اوپر رحم کیجئے, اپنی اولاد کی یتیمی پر رحم کیجئے, اپنی بیوی کے بیوہ ہونے کے اوپر رحم کیجئے. وہ شاید انگریزوں کا پوتا ہوا خادم تھا. اس نے ساری بات کہہ کر کے نتیجے میں کیا کہا, سلطان ٹیپو شہید پوچھ رہے تھے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو, صاف لفظوں میں کہو. کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انگریزوں کے ساتھ صلح کر لو, صلح کر لو گے وہ تمہاری حکومت کو باقی رکھیں گے اور تمہاری جان کو بھی معاف کر دیں گے, بس ان کو کچھ ٹیکس دیتے رہنا پڑے گا, تمہاری اور تمہاری اولاد کی زندگی بچ جائے گی. سنیے میرے دینی بھائیو, سلطان نے اس موقع کے اوپر جواب دیا کہ میری دل کی آرزو یہ ہے انسان کو صرف زندگی میں ایک مرتبہ موت آتی ہے, اس موت سے ڈرنا کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں کب موت آئے کہاں موت آئے, میں اپنی ذات کو, الفاظ سے سلطان کے, میں اپنی ذات کو اور میری اولاد کو دین محمدی کے لیے وقف کر چکا ہوں, اب میں کوئی چیز صلح کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں جان کی قربانی دے سکتا ہوں لیکن ان انگریزوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. اس جرأت مندانہ جواب آپ نے عنایت فرمایا. میرے دینی بھائیو, اس موقع کے اوپر اگر کچھ غدار نہ ہوتے تو ہندوستان کی تقدیر کچھ اور ہوتی, ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا, لیکن رب ذوالجلال والاکرام کو منظور کچھ اور تھا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. انگریزوں نے میسور کے قلعے کے اوپر زبردست حملہ کیا اور اگلے دن انگریزوں کی توپوں نے میسور کے قلعے کے اندر درار کر دی تھی, ایک پٹن ہو چکی تھی. اس موقع کے اوپر کچھ انگریزوں کے غداروں نے ایک سفید رنگ کا جھنڈا ہلا کر کے انگریزوں کو رہبری کر دی کہ اس جگہ کے اوپر قلعے کی دیوار میں درار ہے, اس سے اندر گھسنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. ہزاروں انگریز سپاہی اس درار کی طرف آگے بڑھے. سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے وفادار جنرل سید عبدالغفور, اللہ کی ہزاروں کروڑ رحمتیں ان کے اوپر نازل ہو, ایک دستہ لے کر کے آگے بڑھتے ہیں, فوجی ایک ٹکڑی کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں. بہت سے غداروں نے روکنے کی کوشش کی جو قلعے میں موجود تھے اور انگریزوں کا نمک کھاتے تھے, لیکن سید عبدالغفور نے کسی کی نہیں سنی اور پوری ہمت کے ساتھ لڑتے رہے اور انگریزوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے رہے. بالآخر ایک انگریزوں کے زر خرید نے, پیسوں سے پھٹے ہوئے آدمی نے, پہلے سے انگریزوں سے معاملہ طے تھا, कि सख्त गर्मी का मौसम था, क्योंकि मई का महीना था, का मैं एक हरे रंग की छतरी सैयद अब्दुल गफूर के ऊपर लगाऊंगा गर्मी के नाम पर, तुम समझ जाना कि यही असली कमांडर है। चुनांचे वो अंग्रेजों का चमचा खैर ख्वाही के नाम के ऊपर सैयद अब्दुल गफूर की खिदमत में आता है और आकर के कहता है कि आप सुबह से लड़ रहे हो, बहुत थक गए, सख्त गर्मी हो रही है, आइए मैं तुम्हारे ऊपर एक हरी रंग की छतरी लगा दूं जिसके साये में आप थोड़ी देर आराम कर सको। बस वो छतरी लगना एक निशान था, अंग्रेजों ने फौरन उसी जगह के ऊपर तोप के गोले बरसाने शुरू कर दिए और सैयद अब्दुल गफूर उसी वक्त के ऊपर हरे रंग की छतरी के साये के अंदर शहीद हो गए। जब सैयद अब्दुल गफूर की शहादत हुई तो फौरन अंग्रेज फौजियों के लिए रास्ता खुल गया, वो किले की दराओं से शिगाफों से किले के अंदर घुसने के अंदर कामयाब हो गए। एन दोपहर का वक्त हो चुका था, जोहर की नमाज पढ़ करके सुल्तान टीपू शहीद किले के अंदर एक जगह पर खाने के लिए बैठे, दस्तरखान लगा हुआ था, पहला लुकमा बिस्मिल्लाह पढ़ करके उठाया और किसी ने आकर के गम की खबर सुनाई कि हजरत सैयद अब्दुल गफूर अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए और अंग्रेज फौजी किले के अंदर घुसने के अंदर कामयाब हो गए। बस वो लुकमा जो उठाया था वो लुकमा दस्तरखान पर वापिस रख दिया। सुल्तान टीपू जबाने हाल से कह रहे थे, मैं भूखा रह सकता हूँ, खाना छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने मुल्क को अंग्रेजों के हवाले नहीं कर सकता हूँ। लुकमा रख दिया और फौरन उठे, एक हाथ में अपनी तलवार संभाली और दो नालियों वाली बंदूक हाथ के अंदर ली और ताऊस नाम का एक घोड़ा मंगवाया और घोड़ा मंगवा करके सुल्तान टीपू उसके ऊपर सवार हुए और अंग्रेजों की तरफ आगे बढ़े। बस ये मौका था, अंग्रेजों के साथ घमसान की लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसी घमसान लड़ाई शुरू हुई कि जिस लड़ाई के अंदर सुल्तान एक के बाद एक अंग्रेज अफसरों को और फौजियों को जहन्नम में पहुंचा रहे थे, ये सिलसिला काफी अरसे तक चलता रहा, तवील अरसा ये सिलसिला चलता रहा। फिर आखिर एक वक्त वो आया कि सुल्तान किले के दरवाजे से बाहर निकल करके अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। बस जैसे ही सुल्तान का बाहर निकलना था, उस मौके के ऊपर मीर सादिक जैसे गद्दार ने किले का दरवाजा बंद कर लिया। सुल्तान टीपू शहीद किले के बाहर है, किले का दरवाजा बंद है और अंग्रेजों ने चारों तरफ से जबरदस्त लश्कर लेकर के यलगार कर दी। सुल्तान टीपू शहीद किले के दरवाजे की तरफ वापिस आए, मीर सादिक ने किले का दरवाजा गद्दारी से बंद करवा दिया था और किले का दरवाजे का जो पहरेदार था वो भी अंग्रेजों के पैसे खाने वाला नमक हराम आदमी था, उसने भी दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। इन सब हालात के बावजूद सुल्तान टीपू आगे बढ़े और आगे बढ़कर के अंग्रेजों का अकेले मुकाबला करते रहे। जब चारों तरफ से अंग्रेज सुल्तान टीपू शहीद पर हमला कर रहे हैं तो आपके एक वफादार सिपाही अहमद खान ने जब ये बात देखी कि ये मीर सादिक ने दरवाजा बंद करवा दिया और सुल्तान टीपू शहीद को बाहर कर दिया, तो उस वफादार सिपाही ने आगे बढ़ करके तलवार के एक झटके से मीर सादिक का सर उड़ा दिया। गद्दारों की भी यही सजा होनी चाहिए, जिन्हें गद्दारी करके अंग्रेजों के पैसे खा करके किले का दरवाजा बंद करवा दिया और सुल्तान को किले से बाहर कर दिया, या तेरी भी यही सजा होगी। मौलिकीन लिखते हैं कि उस वीर सादिक का हाल ये हुआ कि उसका चेहरा बिगड़ गया, लोगों ने दफन से पहले पहले गद्दारी की सजा देख ली, उसका चेहरा ऐसा डरावना और भयानक लगता था कोई इसके करीब आने की हिम्मत नहीं करता था। लाश को चार दिन तक किसी ने दफन नहीं किया, खतरनाक बदबू उसकी लाश में से निकलती थी, फिर आखिर किसी ने उठा करके उसको घड़े में डाल दिया। और दूसरे गद्दारों के साथ भी ऐसा ही कुछ कुदरती हादसे हुए। लिखा है मौलिकीन ने कि सुल्तान टीपू शहीद ने जब मीर सादिक ने दरवाजा बंद करवा दिया, अपनी जुबान से एक जुमला कहा था, मीर सादिक मैं देख रहा हूं तू अंग्रेजों के साथ गद्दार बन चुका है, पर किले का दरवाजा तूने बंद करवाया है, याद रख तू और तेरी नस्ल के ऊपर ऐसे हालात आएंगे कि इत्तित दाने के लिए वो तरसेंगे। ये कलिमात से सुल्तान टीपू शहीद के, तुमने मुल्क के साथ गद्दारी की है, सल्तनत खुदादाद के साथ गद्दारी की है, अल्लाह तुझे और तेरी औलाद को एक अनाज और गल्ले के दाने के लिए तरसाएंगे और तड़पाएंगे। दुनिया ने देखा ऐसी ऐसी मोहलिक बीमारी उन गद्दारों को लगी कि आज तो कैंसर के बीमारों को ओबरा नाग का जहर का इंजेक्शन दिया जाता है रिफाइन करके, लेकिन उन गद्दारों को ऐसी ऐसी बीमारियां लगी कि जहरीले सांप जिंदा लाकर उनको डसाए जाते थे, फिर भी उनको बीमारी में कोई इफाका नहीं होता था, ऐसे खतरनाक जहरीले जरासीम उनके बदन के अंदर लग चुके थे। लड़ते लड़ते शाम हो गई, मुसलसल जख्म खा रहे हैं, लेकिन ये मर्दे मैदान सुल्तान की वो शहीद मैदान के अंदर जमे हुए हैं। हालात में लिखा है उस मौके पर एक अजीब वाकया ये भी हुआ, एक खादिम जो बाद में गद्दार साबित हुआ, उसके पास पानी की मशक थी जिसमें पानी भरा हुआ था, सुल्तान टीपू शहीद लड़ते लड़ते बार बार उससे पानी मांग रहे, मुझे पानी पिलाओ, प्यास लगी है पानी पिलाओ, सख्त गर्मी और जोहर से लड़ना शुरू किया था, लेकिन वो गद्दार पानी होने के बावजूद सुल्तान टीपू शहीद को एक कतरा भी पानी देने के लिए राजी नहीं हुआ। मौलिकीन लिखते हैं कि प्यास की हालत के अंदर प्यासे रह करके सुल्तान टीपू शहीद ने मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, और ये बे इख्तियार उस कुर्बानी की मुशाबहत और इत्तेबा हो गई कि मैदाने करबला के अंदर नवासे रसूल सैयदना हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर पानी बंद किया कूफियों ने, और उसी प्यास की हालत के अंदर आपने जान दी है। ऐसे भी हजरत सुल्तान टीपू शहीद को, वो भी कुरैशी थे ये भी कुरैशी है, हजरत हुसैन के वालिद का नाम भी अली है, सुल्तान टीपू के वालिद का नाम भी हैदर अली है, हजरत हुसैन की वालिदा का नाम फातिमा है, सुल्तान टीपू की वालिदा का नाम भी फातिमा है। अल्लाह ने ये भी गैर इख्तियारी सुन्नत अदा करवा दी कि प्यास की हालत में इस मुल्क के खातिर सुल्तान टीपू शहीद ने जान दी है। आज कोई पूछे तो सही, जो हमको गद्दार कहते हैं, जो हमको गद्दार कहते हैं, जो हमको आतंकवादी कहते हैं, उनसे कोई पूछे तो सही कि इस मुल्क के लिए प्यासे रहकर के जान देने वाले कौन थे, किन्होंने प्यास की हालत के अंदर देश के खातिर अपनी जान की कुर्बानियां दी थी। मगरिब का वक्त हो रहा है और पूरे मैदान के अंदर लाशों के अंबार पड़े हुए हैं, सुल्तान टीपू शहीद जख्मी हैं, अपने ताऊस नामे घोड़े के ऊपर बैठ करके जख्म की हालत के अंदर भी दुश्मनों का बराबर मुकाबला कर रहे हैं। इतने में राजा खान नाम का एक आदमी आया जो अंग्रेजों के टुकड़ों के ऊपर जिंदगी गुजारता था, उसने आकर के सुल्तान टीपू शहीद से कहा, अब भी आपके पास मौका है, आपकी जान अंग्रेज लोग माफ कर देंगे, बख्श देंगे, आप अंग्रेजों के साथ सुलह कर लीजिए और जंग खत्म हो जाएगी। बस उसी एक तरफ सूरज डूब रहा है, गुरूब हो रहा है और बदन से जख्म से खून निकल रहा है और वो लालच दिला रहा है कि सुलह कर लो, अब भी अंग्रेज तुम्हारी जान को बख्श देंगे। उस मौके पर सुल्तान टीपू शहीद ने वो अपना तारीखी जुमला इरशाद फरमाया जो आज बच्चों बच्चों की नौके जबान है, फरमाया, मेरे नजदीक शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, मेरे नजदीक शेर की 1 साल जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। फिर अंग्रेजों का एक गोला आया और ताऊस घोड़े को शहीद कर देता है, सुल्तान टीपू शहीद जमीन के ऊपर गिर पड़े, और जमीन के ऊपर खड़े खड़े अंग्रेजों का मुकाबला करने लगे, उस जख्म के हालात के अंदर भी आपने न जाने कितने अंग्रेज अफसरों को जहन्नम के अंदर पहुंचाया। बिलाखिर फिर मीर सादिक आया और मीर सादिक अंग्रेजों के साथ चैटिंग करके आया था। वो जानते नहीं थे कि कौन सुल्तान टीपू शहीद मुतायन है, वो तो ये समझते थे कि इतना बड़ा ये लश्कर है। तो मीर सादिक ये कहकर के आया कि मैं जिसके पड़ोस में जाकर के खड़ा हो जाऊं, तुम समझ लेना कि वही सुल्तान टीपू शहीद है। ये साजबाज करके आया और खैर आही के नाम पर सुल्तान टीपू शहीद के बाजू में आकर के खड़ा हो गया। और खड़े होकर के जब वो आकर के मीठी मीठी बातें करने लगा, और यकीन लिखते हैं कि सुल्तान टीपू शहीद ने कह दिया था, उससे पहले ही मीर मोइनुद्दीन आया था। मीर सादिक तो पहले ही मर चुका था, मीर मोइनुद्दीन अंग्रेजों के हाथ के ऊपर बिका हुआ था, वो पड़ोस में आके खड़ा रह गया था। उसको जब उसने मीठी बातें करने शुरू की, सुल्तान टीपू शहीद ने साफ लफ्जों में कह दिया, जो बात तुम कह रहे हो ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है तुम किस नियत से ये सब बातें कह रहे हो। बस क्या था कि अंग्रेजों की तमाम बंदूकें पूरे मैदान से मुतवज्जे होकर के अकेले सुल्तान टीपू शहीद के ऊपर बारिश के कतरों की तरह बरसने लगी, और एक गोली सीने पर, एक दाहिने कान के ऊपर और बदन की दूसरी दो जगह पर कुल चार गोलियां एक साथ आकर के ऐसी खतरनाक लगी कि सुल्तान टीपू शहीद जख्मी होकर के जमीन के ऊपर गिरे। खून का फवारा उड़ा, एक अंग्रेज कर्नल दौड़ करके आया, आपकी कमर मुबारक के ऊपर एक कीमती हीरे और जवाहरात का पट्टा बंधा हुआ था, वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ये चोर लोग चोरी करने ही तो आए थे। सबसे पहले उसने आपके कमर के ऊपर से हीरे और जवाहरात का पट्टा छोड़ना शुरू किया। सुल्तान के बदन के अंदर अभी जान की रूह निकली नहीं थी, चार चार गोली लगी हुई है, खून का फवारा उड़ा हुआ है, जख्म होकर जमीन पे गिरे हैं, लेकिन एक अंग्रेज जब खजाने को लूटने की कोशिश करता है, सुल्तान की गैरत ईमानी को जोश आया कि मेरे जीते जी मेरे देश का खजाना कोई अंग्रेज लूट के ले जावे, ये मुझे गवारा नहीं है। ऐसे जख्म की हालत के अंदर तलवार संभाली और उस अंग्रेज के ऊपर एक जोर का वार किया, तो उसने अपनी बंदूक को आगे कर दिया, बंदूक के दो टुकड़े हो गए। फिर सुल्तान ने दूसरा वार किया तो उस अंग्रेज, उसके बाजू में कोई दूसरा अंग्रेज खड़ा था, उस वार के जरिए से उसके दो टुकड़े कर डाले। कैसे हिम्मत वाले थे, जख्म के हालात के अंदर भी उन्होंने उस अंग्रेज के दो टुकड़े करके जमीन के ऊपर गिरा दिए। मगरिब का वक्त हो रहा था, जख्म से खून ज्यादा बह चुका था, बस उसी वक्त के ऊपर सुल्तान टीपू शहीद की रूह कब्ज हुई और 49 साल की उम्र के अंदर ये मर्द मैदान अपने मुल्क के खातिर अपनी जान की कुर्बानी को पेश करता है। ए शहीद मर्द मैदान वफा, ए शहीद मर्द मैदान वफा, तुझ पर सलाम। अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं, ए शहीद मर्द वफा मैदान वफा, तुझ पर सलाम, तुझ पे लाखों रहमते ला इंतहा, तुझ पर सलाम। आगे फरमाते हैं, हिंद की किस्मत ही में, हिंद की किस्मत ही में रुसवाई का सामान था, वरना तू ही अहद आजादी का एक उन्वान था। अपने हाथों, अकबर इलाहाबादी शिकवा कर रहे हैं, अपने हाथों खुद तुझे अहले वतन ने खो दिया, अपने हाथों खुद तुझे अहले वतन ने खो दिया, आ कैसा बागबां शामे चमन ने खो दिया। अल्लाह अकबर, अगर ये गद्दारान न होते पता नहीं उस दिन मुल्क की तकदीर के अंदर क्या होता। मौलिकी लिखते हैं कि हैरत की बात हुई कि उस रात के अंदर गर्मी की मौसम होने के बावजूद मैसूर की कावेरी नदी के अंदर सैलाब आया और आसमान से बारिश बरसने लगी, गोया के ये अल्लाह के यहाँ आपकी शहादत के मकबूल होने की दलील थी।
बाकी कोई मुजरिम मरता है तो फमा वकत अलैहिम अस्समा वल अर्ध, ना आसमान को रोना आता है ना जमीन रोती है, किसी अल्लाह के वली का इंतकाल होता है, आसमान जमीन दुनिया की चीजें रोती है। मारिखिन लिपे आसमान से बारिश हुई, गोया के आसमान को रोना आया और कावेरी नदी के अंदर जबरदस्त मिट्टी डालने लगी कि आज हमने अपने एक खैर ख्वाह को खो दिया है। बताए तो सही वो लोग, हर इस मुल्क के अंदर बहुत दुख की बात यह है, कुछ इतिहास लिखने वाले वो हैं जिन्होंने मुसलमान बादशाहों को जालिम बतलाया है। मैं इनको पूछूं कि सुल्तान टीपू शहीद के ऊपर रोने आने वाली इन हिंदू औरतों से जाके पूछो कि तुम क्यों रोने आई थी, अगर सुल्तान टीपू शहीद ने जुलम किया होता तो वो फूल लेकर के खुश होने के लिए आती, लेकिन तमाम मैसूर के हिंदुओं ने अपने मजहब और धर्म के मुताबिक शोक मनाया, सबने उपवास किए, रोजे रखे, सुल्तान टीपू की शहादत के दूसरे दिन और पूरे मैसूर के अंदर मातम का माहौल रहा। ये दलील इस बात की थी कि सुल्तान टीपू शहीद हिंदुओं और मुस्लिमों हरेक के साथ अच्छी तरीके से रहने वाले थे, हरेक का हक अदा करने वाले थे। मैं इस मौके के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों की नजर में सुल्तान टीपू की एक अजीब बात नजर करना चाहता हूँ। 1791 के अंदर रघुनाथ राव ने जब हिंदुओं के मंदिर पर मैसूर में अटैक किया था और मंदिर के पुजारियों को कत्ल किया था तो सुल्तान टीपू शहीद ने खुद उस मंदिर की हिफाजत की और जिन्होंने मंदिर के ऊपर अटैक किया सुल्तान टीपू शहीद ने दोबारा वो मंदिर बनवाया और मंदिर को दोबारा आबाद कराने के पीछे उन्होंने बहुत बड़ा माली एतबार से भी खर्च किया। बल्कि एक मौके पर सुल्तान के सिपाहियों में से कुछ सिपाही जिसमें कुछ हिंदू थे कुछ मुसलमान थे उन्होंने मिलजुल करके कंपली के इलाके कंचनगढ़ के इलाके में कुछ लड़कियों के ऊपर जबरदस्ती जिना का काम किया। फौज के 50 सिपाहियों में जिसमें आधे हिंदू आधे मुसलमान थे जब सुल्तान टीपू शहीद को यह पता चला कि मेरी फौज के 50 सिपाही जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों है उन्होंने हिंदू लड़कियों के ऊपर जबरदस्ती जिना किया है, उन 50-50 को बुलवाया और गोली मार करके 50-50 को खत्म कर दिया। सुल्तान टीपू शहीद ये कहना चाहते थे कि हमारी हुकूमत में किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं होगी, हम तो उस नबी की बात को लेकर के दुनिया में चलते हैं जो सबके साथ अदल और इंसाफ करने के लिए आए हैं। लिहाजा उन 50 फौजियों को जिसमें मुसलमान भी थे सुल्तान टीपू शहीद ने गोलियों के जरिए से उड़वा दिया, ये उनका अदल और इंसाफ की बात थी। मेरे दीनी भाइयों 1799 में सुरंगापट्टनम के अंदर 4 मई को जब सुल्तान टीपू शहीद की लाश गिरी है तो अंग्रेज अफसरान दौड़ के आए, अजीब खुदा की कुदरत पूरा बदन गर्म है, अंग्रेज हैरान कि आदमी जिंदा है या मरा हुआ है, इसलिए कि दिल चलता नहीं, धड़कन बंद है और बदन बदस्तूर गर्म है। उन्होंने किसी अंग्रेज डॉक्टर को बुलवाया, उसने नब्ज देख करके कहा कि आदमी की मौत हो चुकी है। उन बिचारे दिल के अंधों को क्या मालूम कि मोमिन की ईमान की हरारत मौत के बाद भी खत्म होती नहीं है, मौत के बाद भी उसकी ईमानी हरारत और ईमानी जज्बे उसके बाकी रहते हैं। लिखा है कि सुल्तान टीपू शहीद की आंखें खुली हुई थी और ऐसा डरावना चेहरा था कि जो अंग्रेज देखता हैबत खाकर के भाग जाता था, गोया के मरने के बाद भी उनकी हैबत अंग्रेजों के दिल से नहीं निकली। और जनरल हॉर्स नाम का जो हकीकत में हॉर्स था वो आकरीब आया, अंग्रेजी में घोड़े को हॉर्स कहते हैं, जनरल हॉर्स नाम का एक कमांडर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक लेकर के दौड़ा और दौड़ करके सुल्तान टीपू शहीद के सीने पर घाड़ दिया और घाड़ करके वो चिल्लाता है कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। मालूम हुआ कि जब तक सुल्तान टीपू शहीद जिंदा रहे किसी अंग्रेज के दिल में ये आरजू भी नहीं हुई कि हिंदुस्तान को हम अपना गुलाम बनाए। ये हमारे आबा अजदाद थे जिन्होंने 1799 के अंदर इस श्रीरंगपट्टनम के मैदान के अंदर जान की कुर्बानी देकर के अपने मुल्क को आखिरी खून के कतरे तक बचाने की कोशिश की थी। 1799 की इस जंग के खत्म होने के बाद अंग्रेजों की हिम्मत बढ़ी, अंग्रेजों की जुरत बढ़ी और फिर मैसूर पर हुकूमत जमाने के बाद ये लोग धीमे धीमे आगे बढ़े और दिल्ली की तरफ आगे बढ़े। यहाँ तक के दिल्ली का उन्होंने मुहासरा करना शुरू किया। 1803 ईस्वी के अंदर हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आज हम क्या समझते हैं हजरत शाह साहब को, हजरत उलमा मेरी इस गुस्ताखी को माफ फरमाएंगे, अपने जमाने के एक मुहद्दिस बेबदल थे, मुफस्सिर बेमिसाल थे। याद रखो हिंदुस्तान की आजादी की जंग के लिए सबसे पहला फतवा देने वाले हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। अगर अल्लाह ने तुम्हें काने बसारत अता फरमाए हो, जाओ कब्रस्तान मेहदियान में, दिल्ली में कब्रस्तान मेहदियान में आज भी मस्जिद रहीमी की वो दीवारें चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहेगी कि इसी मस्जिद की चार दीवारी के बीच में बैठ करके शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1803 ईस्वी में हदीस पढ़ाते पढ़ाते, तफसील पढ़ाते पढ़ाते मसनद दर्स पर बैठकर फतवा दिया था, हिंदुस्तान दारुल हर्ब हो चुका है, इसको आजाद कराना हर मुसलमान की मजहबी जिम्मेदारी है। फतवा अजीजिया के सफा नंबर 17 के ऊपर ये फतवा छपा हुआ मौजूद है फारसी जबान के अंदर, जिसको चाहे उस फतवे को पढ़ ले। आज दुनिया फतवे को और मुफ्ती और मौलवियों को बदनाम करती है, याद रखना चाहिए यही वो उलमा थे, यही वो मौलवी लोग थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए सबसे पहले फतवा दिया था 1803 ईस्वी के अंदर। अगर शाह अब्दुल अजीज का फतवा क्या था, आग बनकर के भड़का, शौला बनकर के उठा और पूरे मुल्क के मुसलमानों के अंदर एक जज्बा पैदा हो गया अंग्रेजों के सामने लड़ने का और उलमा अपने मसनद दर्स को छोड़ करके मैदान में आए। शाह अब्दुल अजीज साहब ने अपने खानदान के दो नूरानी चश्मो चिराग हजरत शाह मोहम्मद इसहाक साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह और शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इनको वक्फ कर दिया आजादी की खिदमत के वास्ते। हजरत शाह इस्माइल शहीद और हजरत शाह सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 1808 से लेकर के 1831 तक बराबर मुल्क की आजादी के लिए जंगे लड़ी है। उस दौर की मैं एक अजीब बात आपको सुनाऊं, नवाब फरजंद अली खान जो बड़े नवाब गुजरे हैं, उन्होंने उस जमाने के अंदर 1,00,000 चांदी के सिक्के हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को दिए और देकर के फरमाया, हजरत मुल्क की आजादी के लिए मेरे 1,00,000 चांदी के सिक्के कबूल कर लीजिए। 1,00,000 चांदी के सिक्के, उस दौर की बात कर रहा हूं। इतिहास लिखने वाले लिखते हैं उस जमाने के अंदर 8 आने की एक बकरी मिला करती थी। अंदाजा लगाओ जिस दौर में 8 आने की एक बकरी मिलती हो, 1,00,000 चांदी के सिक्के कितनी बड़ी कीमत रखते हैं। इतना ही नहीं, नवाब फरजंद अली खान ने अपना एक नौजवान बेटा लाकर के हजरत शाह इस्माइल शहीद की खिदमत में पेश किया, हजरत मेरे इस बेटे को कबूल कर लो, मेरी आरजू ये है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर मीना की वार, मीना के जंगलों में छुरी चलाई थी, मेरी आरजू है कि सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करते हुए मेरे नौजवान बेटे के गले के ऊपर अंग्रेजों की छुरी चले, मैं इसके लिए अपना जवान बेटा आपके लिए कुर्बान करता हूं, आप रखिए मेरे जवान बेटे को। حضرت شہید رحمت اللہ علیہ نے فرزند علی خان کے اس نوجوان بیٹے کو اپنے ساتھ رکھا. یہاں تک کہ اتر پردیش میں غازی پور کے اندر جب 6 نوجوان مسلمانوں کو انگریزوں نے چوراہے پر کھڑے ہو کر کے شہید کیا, اس میں وہ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا نواب فرزند علی خان کا, کیا ان کے جذبات تھے کہ جس طرح اللہ کے ایک نبی نے اللہ کے خاطر اپنے جوان بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں قربان کیا تھا, مسلمانوں نے اس دیش کی آزادی کو اپنے مذہب اور دین اور دھرم کا ایک حصہ سمجھا ہے اور اس کے لیے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربان کروایا ہے. یہ ان حضرات کے مبارک جذبات سے یہ جنگ آگے بڑھتی رہی. یہاں تک کہ 1857 کے اندر انگریزوں کے مقابلے کے اندر ہندوستان کے لوگوں نے آخری اسلحہ والی جنگ لڑی باقاعدہ منظم پورے ملکی پیمانے کے اوپر. 1857 کے موقع کے اوپر بہادر شاہ ظفر جب لال قلعے کے اندر محصور ہو گئے اور ہمایوں کا مقبرہ, جب نظام الدین مرکز جاؤ تو بالکل سامنے ہمایوں کا مقبرہ ہے, کبھی اسی ہمایوں کے مقبرے میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ راتوں کو جا کر امت کے لیے رویا کرتے تھے, اسی ہمایوں کے مقبرے سے بہادر شاہ ظفر کو قید کیا گیا ہے. لال قلعے سے نکل کر کے بہادر شاہ ظفر ہمایوں کے مقبرے میں آ کر کے پناہ لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے. انگریزوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد جب دوسرے دن صبح کے اندر ان کے سامنے ناشتے کے لیے کھنچا لایا گیا بہادر شاہ ظفر کے سامنے, تو کھنچے کے اوپر بہترین ململی کپڑا ڈھانکا ہوا تھا مغلیہ انداز کے اندر, کے اندر ناشتہ ہوگا اور اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا. جب سلطان بہادر شاہ ظفر کے سامنے وہ کھنچا آیا اور آپ نے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو ہم تم ہوتے تو دیکھ کر کے ہی ہمارا دل بند ہو جاتا, اندر ناشتہ نہیں تھا, بہادر شاہ ظفر کے چاروں جوان بیٹے کے کٹے ہوئے سر رکھے ہوئے تھے. جب خون کے اندر لت پت چاروں بیٹے کے سر دیکھے تو بہادر شاہ ظفر کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے بلکہ ہمت ایمانی سے کہنے لگے, مغلیہ سلطنت کے شہزادوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے سامنے سر فرو ہو کے آیا کرتے ہیں, یہ مغلیہ سلطنت کی روایت رہی ہے. یہ کہہ کر کے سلطان نے اس ناشتے کے کھنچے کو آگے بڑھوا دیا. یہ تھے ہمارے باپ دادا جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے خاطر ایسی عظیم قربانیاں پیش کی. 1857 کی جنگ کے ناکامی کے موقع کے اوپر میں کیا درد بھری داستان آپ کو سناؤں, کلیجہ پھٹ جاتا ہے, جگر سوکھ جاتا ہے, زبان درد بھری داستان کو بول نہیں سکتی. 1, 2, 3, 4 نہیں 55,000 مسلمان علماء کرام کو پھانسی کے اوپر لٹکایا گیا. 55,000 علماء کرام کو پھانسی کے اوپر لٹکایا گیا. یہ میں نہیں لکھتا, پنڈت میوارام گپتا نے اپنی کتاب مجاہدین آزادی میں اس بات کو لکھا ہے کہ 1857 کی ناکامی کے اندر 55,000 مسلم علماء کو دلی کے اندر پھانسی کی سزا دی گئی. لکھتے ہیں پنڈت میوارام گپتا کہ دلی کے جتنے درخت تھے ان تمام درختوں کے اوپر پھانسی کا پنگا لٹکایا ہوا تھا. مسلمان عالموں کو پکڑ کے لایا جاتا تھا اور لا کر کے انگریز ان کو ہاتھی کے اوپر بٹھاتے تھے اور ہاتھی پر بٹھا کر کے ان کے گلے میں درخت کے اوپر لگا ہوا پھانسی کا پنگا داخل کیا جاتا تھا اور ہاتھی کو آگے بڑھا دیتے تھے اور وہ مسلمان مولوی پنگے کے اندر لٹک جاتا تھا اور تڑپ تڑپ کر کے اپنی جان کو دے دیتا تھا. ایک انگریز لیڈی نکسن لکھتی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا تھا तो उस मुसलमान मौलवी की लाश जब सूख जाती थी दरख्त पर, तो अंग्रेजी में जैसे आठ होता है एक होता है, उस अंदाज में ऊपर के दो हाथ यूं मुड़े हुए, नीचे के दो पैर यूं मुड़े हुए, इसी अंग्रेजी के आंख के अदद की शक्ल के अंदर लाश उसकी ऊपर लटकी हुई होती थी। और वो लेडी लिखती है अपनी किताब के अंदर, आज भी ये सारे सबूत लंदन शहर के अंदर इंडिया लाइब्रेरी और ब्रिटिश लाइब्रेरी में ये सारी सबूतें मौजूद है, लिखी हुई चीजें मौजूद है वहां पर। एक वही अंग्रेज औरत लिखती है कि मैं जब दिल्ली गेट के ऊपर इंडिया गेट पर जब शाम को अपने शोहर के साथ घूमने निकलती थी, मैं अपने हाथ में एक रिवॉल्वर लेकर के निकलती थी और मैं रिवॉल्वर इसलिए लेके जाती थी ताकि मुसलमान आलिमों के ऊपर मैं रहम करूं, इसके लिए रिवॉल्वर लेके जाती थी। फिर आगे वो लिखती थी कि रिवॉल्वर के जरिए कैसे रहम होती है, तो आने वाले जमाने के लोगों को ये सवाल हल नहीं होगा, इसलिए मैं खुद ये सवाल का जवाब हल करके जाती हूँ कि रिवॉल्वर से रहम का मतलब ये होता था कि मुसलमान उलमाए किराम को, मौलवियों को हमारे लोग अंग्रेज लोग पकड़ पकड़ के लाते थे, जिंदा उनके पेटों को चीरते थे और चीर करके गरम पिघलाया हुआ तांबा और नमक उनके पेट में भरा जाता था, जिससे वो बेचारे तड़पते और तरसते थे और उसी हाल में उनको रास्ते पर डाल दिया जाता था। वो बेचारा कई कई दिन तक भूखा प्यासा तड़पता और तरसता रहता था, तो कहा मैं रिवॉल्वर लेके इसलिए निकलती कि उसको गोली मार दूं ताकि वो मर जावे और उस परेशानी से उसको नजात मिल जावे। इस रिवॉल्वर को भी उन्होंने अपनी रहम से ताबीर किया। इस तरह 55,000 उलमाए किराम ने इस मुल्क की आजादी के खातिर 1857 में कुर्बानी दी। पंडित मेवाराम गुप्ता आगे लिखते हैं, हिम्मत से सुनिए, यह है वो दास्तान दर्द भरी, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ही जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। पंडित जी लिखते हैं कि 1857 की जंग की नाकामी की सजा में 5,00,000, हिम्मत से सुनिए, आज इसीलिए तो हम इस मुल्क को हिम्मत से कहते हैं कि हमारा भी है, हम भी इस मुल्क के बराबर के हिस्सेदार थे। पंडित जी लिखते हैं, 1,00,000, 5,00,000 मुसलमानों को दिल्ली से लेकर मेरठ के रास्ते के ऊपर फांसी दी गई, 5,00,000 मुसलमानों को 1857 की जंग की सजा के अंदर, 55,000 उलमा और 5,00,000 आम मुसलमानों को दिल्ली के अंदर मेरठ तक फांसी दी गई। कहते हैं कि जमुना नदी का पानी हफ्तों तक मुसलमानों के खून से लाल रंग का रंगा हुआ हुआ है और मुसलमानों की लाश से जमुना नदी के ऊपर ब्रिज और पुल बने हैं। ये वो दास्तान है जो 1857 के मौके के ऊपर इस मुल्क की आजादी के खातिर हमारी कुर्बानी की रही है। 1857 की जब में नाकामी हुई तो अंग्रेजों ने गिलाली परचम उतार करके लाल किले के ऊपर यूनियन जैक को लहरा दिया और पूरा मुल्क अंग्रेजों की मुकम्मल गुलामी के अंदर आ गया और मुल्क के ऊपर अंग्रेजों का कानून नाफिज होना शुरू हो गया। अल्लाह उन तमाम शहदाए जंगे आजादी की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद फरमाए, करवट करवट करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। किसी शायर ने खूब कहा, हम ही ने तो सींचा था कभी, हम ही ने तो सींचा था कभी खून से गुलशन को, क्यों बादे नसीम आज खफा हमसे हुई है। आज बहुत मुनज्जम साजिश के मातहत हमारी इस अजीम शान तारीख को भुलाने की नापाक कोशिशें हो रही है। ऐसे हालात में क्या कुर्बानियां हैं, उन कुर्बानियों को याद करना याद रखना ये हम सब की मजहबी दीनी मिल्ली जिम्मेदारी बनती है। इस निस्बत पर आज का ये जलसा मुनक्किद हुआ, मैं इस पर आपको मुतअद्दिद बार मुबारकबादी पेश करता हूँ। चूंकि 1757 से 1857 तक हम पहुंच गए, अब 1857 से 1947 तक जाना है और उस दौरान ये भी देखना है कि महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब का किरदार रोल कैसे शुरू हुआ। उन सब को सुनाने से पहले मैं बीच के अंदर कुछ देर तवक्कुफ करके मैं ये चाहूंगा कि आप हजरात की खिदमत के अंदर कोई नात नज़म सुनाई जाए, जिससे फिर आपके जिस्म के अंदर ताजगी पैदा हो और फिर से आप यकसू होकर के सुने। चंद घड़ियों के लिए आपको बीच में वक्फा दिया जा रहा
है।